एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा। 22 सितंबर को जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जी मा सा ने जैन स्थानक गुडमंडी में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता बताएगा तो दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। अपनी गलतियों पर स्वयं नजर रखो तो दूसरों की नजरों से बच जाओगे। हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो योग्य है या नहीं है यह जानना जरूरी है। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले स्कूल की फैसिलिटी ना देखकर अध्यापक की योग्यता देखिए। वकील का ऑफिस, डॉक्टर का क्लिनिक कितना जोरदार है, उससे अधिक जरूरी है कि वकील की योग्यता और डॉक्टर की चिकित्सा में निष्णातता। यही परख कर उन्हें फैमिली डॉक्टर, फैमिली वकील बनाइए। इसी तरह गुरु बनाने से पहले उनकी दक्षता समझना जरूरी है। आगमधर गुरु समकिति होना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र में आया है, सहायमिच्छे न्यूनत बुद्धि, आपका सहायक यानी दिशा निर्देशक निपुणार्थ बुद्धि वाला हो। निपुण ही नहीं, निपुण से बढ़कर हो। जैसे एक बिदाम का तेल होता है और एक बिदाम का अर्क होता है, जैसे एक गर्म पानी होता है और एक गर्म पानी में भी निकलने वाली भाप वो ज्यादा प्रभावी होती है, इसी प्रकार बुद्धिमान होने मात्र से निर्देशक नहीं होता बल्कि सभी के कल्याण में दक्ष हो और आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। जैसे पक्षियों का राजा उकाब अपनी निपुणार्थ बुद्धि से सभी पक्षियों की जान बचाता है। यह घटना अभी नहीं फिर कभी यथा प्रसंग बताई जा सकेगी। हम अपनी अच्छाई को बढ़ाने में और बुराई को घटाने में सावधान है तो हमें दूसरों की नजर नहीं लगेगी। भगवान पार्श्वनाथ के समय काली आदि 50 बल्कि उससे भी अधिक आर्यिकाएं संसार की रिद्धि समृद्धि को छोड़कर साध्वियां बनी। शास्त्र पढ़े तपस्या की फिर भी विराधक हो गई। गुरुनी के समझाने पर भी नहीं मानी तो अन्य साध्वियां उनकी अवहेलना करने लगी। आखिर वो पार्श्वनाथ भगवान के संग से निकलकर भटकती रही, नहाना धोना जमीन धोना आदि श्रमण धर्म की विराधना करने लगी। ऐसी शताधिक साध्वियां संग से निकलकर विराधक हुई। यह घोर आश्चर्य की बात है कि तीर्थंकर से दीक्षा लेकर भी साध्वियां भटक गई। फिर सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु पार्श्वनाथ को तो पता था कि ये दीक्षा लेने वाली बालिकाएं भटकेगी, फिर भी उन्हें दीक्षा दे दी क्योंकि कुछ कर्मों की नियति ही ऐसी थी। जबकि आज तो आचार्य या उपाध्याय किसी को भी केवल ज्ञान तो जाने दो अवधि ज्ञान भी नहीं होता, फिर वो तो किसी का भविष्य स्पष्ट रूप से जान नहीं सकते। उस स्थिति में अजानकारी वश उनसे भी गलत दीक्षा हो सकती है। फिर भी पूरी समीक्षा परीक्षा के बाद ही दीक्षा का प्रसंग बनाना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान के युग में भी वृद्ध कुमारिका का वर्णन आता है, यानी कि जवानी में भी बालिकाएं वृद्ध की तरह इंद्रियां वाली हो जाती है। उस युग में भी नहाने धोने की डिप्रेशन वाली बीमारियां थी, जो आज देखी जाती है कि कई महिलाएं घंटों बाथरूम से नहीं निकलती। यह एक ढंग से बीमारी है। किसी भी डिप्रेशन से बचने के लिए स्वाध्याय करना, संत दर्शन, प्रभु भक्ति जरूरी है। भगवान महावीर द्वारा बतलाया गया धर्म शाश्वत है। उसमें सूर्य चिकित्सा चंद्र चिकित्सा का भी वर्णन है, जिनसे बड़े बड़े ऑपरेशन ढंग से किए जा सकते हैं। अभी के वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंचे। देखते जाए, कभी ना कभी आपको इस चिकित्सा का आविष्कार भी सुनने को मिल सकता है। हमें धर्म का मर्म समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भगवान महावीर के सामने नाटक हुए, देव देवियों ने 32 प्रकार के नाटक किए। तो कलियुगी लोग यह कहते हैं कि जब भगवान के सामने हुए तो हमारे सामने भी होना चाहिए। उनको यह नहीं पता कि भगवान ने जो किया है वो अगर करना है तो वो सब करो जो भगवान ने किया है। प्रभु को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक उपदेश नहीं दिया, मौन रहे। 1 मास, 2 माह, 3 मास, 6 मास जैसी कठोर लंबी तपस्या की तो आप भी करो। अगर वो नहीं हो सकती तो फिर भगवान ने जो किया है वह ना करके जो भगवान ने कहा है वह करो। वो कहते हैं सामायिक करो, 5-5 सामायिक करो, निवकारसी आदि 10-5 खान करो, तेला करो, कषाय कम करो, अहंकार छोड़ो, ये सब करो, जीवन सफल हो जाएगा। धर्म प्रभावना। आज का तेला श्रीमती भाविका जी जैन ने संपन्न किया। आज की प्रभावना का लाभ श्री अजय सोनिया जी जैन अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस ने लिया। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत। पूछा कि तुम्हारी बहू दहेज में क्या लाए, तो वह बोला बहू क्या लाए और क्या नहीं लाए इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। माता पिता, भाई बहन, जन्मभूमि, सहेलियां आदि सब कुछ छोड़ दिया। हमारा कर्तव्य है कि इस नए परिवेश में, नए वातावरण में बहू को किसी प्रकार की कमी महसूस ना होने दें, उसका हर तरह का सहयोग सम्मान किया जाए ताकि वह सदा के लिए हमारे साथ रहने का मन मजबूत बना लें, अन्यथा तलाक होते देर नहीं लगती। एक लड़की की नई नई शादी हुई, वो ससुराल में जम नहीं पाई। सारे घर के लोगों की इच्छा पूरी करना उसके वश की बात नहीं थी। वो ससुराल से घर आ गई। कितना भी समझाया गया वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई, पर एक दिन उसमें अद्भुत परिवर्तन आया और वो तुरंत ससुराल चली गई। हुआ यूं कि उनके बंगले में माली एक पौधे को ठीक कर रहा था। वह सूख रहा था, तब उस लड़की ने कहा चाचा यह पौधा सूख रहा है, अच्छा नहीं लगता, अतः इसे उखाड़ कर फेंक दो। तब उस माली ने कहा नहीं बिटिया, यह नर्सरी से लाया गया पौधा है, इसे यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, यहाँ का वातावरण अलग है, उसमें जीने का अभ्यास कर रहा है। 5-7 दिन में यह जम जाएगा, फिर खिल उठेगा। लड़की को यह सुनकर तुरंत समझ में आ गया कि पीहर का वातावरण अलग और ससुराल का अलग है, अतः जमने में टाइम लगेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। बस पौधे से शिक्षा पाकर वह ससुराल में जम गई, घर में जन्नत आ गई, खुद को बदलना सीख जाए। हर गम के पीछे सरगम है। यही स्थिति पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र में तत्कालीन घटनाओं से भी जानने को मिल रही है। नागपुरी में बंधुदत्त की पत्नी मर जाने से लोगों ने बंधुदत्त के प्रति भी उड़ा दिया कि यह कुलक्षणा है, इसके नारी का योग नहीं है, दूसरी शादी की गई तो वह भी मरेगी। यह कुप्रचार होने से अन्य कोई शादी करने को तैयार नहीं। लोगों को झूठी बातों का अफवाह उड़ाने का मजा आता है, उनसे सावधान रहिए। दुनिया में नारद विद्या करने वालों की कमी नहीं है। कई बार लोग ऊपर आकर मुझसे बात कुछ करेंगे और नीचे जाकर लोगों के सामने कुछ भी कह देते हैं, उन्हें तो अपनी बात जमानी होती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो या हमारे संत सती ही क्यों ना हो, अगर वह यह कहते हैं कि आचार्य श्री ने यह कहा है, तो भी उस पर विश्वास करने से पहले सीधा संपर्क करके जानकारी करके स्पष्ट जान लेना जरूरी है। बेचारा बंधुदत्त तनाव में आ गया तो पिता ने व्यापार करने सिंगल द्वीप भेज दिया। पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन नाव पानी में डूब गई। पैसा कमाया पर टिक नहीं पाया, क्योंकि कुछ भी दान नहीं दिया हुआ हो तो ऐसा होता है। कमाने के साथ कुछ न कुछ पैसा अच्छे काम में लगाते रहो, ताकि आपकी पुण्यवानी बढ़ती रहे, संपत्ति सुरक्षित रहे। बंधुदत्त ने सामायिक की होगी, संतों की सेवा की होगी, तो तन तो बच गया, धन डूब गया। लकड़े तख्ते पर बैठे रत्नद्वीप पहुंचा, वहां जहां चारण मुनि मिल गए, उनकी शरण में जाकर सारी बातें सुना दी। महाराज के दर्शन हुए, वहां चित्रांगद नामक विधाधर आया हुआ था, उसने स्वधर्मी समझकर उसका सहयोग किया। उसकी शादी कौशाम्बी के जिंदत की पुत्री प्रियदर्शना से करा दी। इसे कहते हैं संत दर्शन का लाभ, अतः संतों के दर्शन लाभदायक हैं। खतरों से बचना है तो संत दर्शन सामायिक आदि करते रहिए, और धन बचाना है, पुण्यवानी कमाना है, तो कमाई का कुछ ना कुछ पैसा दान देते रहिए। लेकिन जो दान देने में भी तृष्णा अहंकार ईर्ष्या रखता हो, उसका दान एक ढंग से अमृत को कीचड़ में डालने की तरह निष्फल हो जाता है। संतों का सम्मान करना सीखिए, संत का कल्याण करना सीखिए। सबसे बड़े पात्र हैं संत, दूसरे नंबर पर श्रावक और तीसरे नंबर पर हैं स्वधर्मी। पात्रता के अनुसार दान का लाभ मिलता है। संतों की सेवा करने वाला महामहा लाभ को पता है। ऋषभदेव भगवान ने वैद्य के भव में एक संत की चिकित्सा की तो तीर्थंकर गोत्र की उच्चतम प्रकृति प्राप्त की। संत सेवा और संत प्रभावना सर्वोपरि है। दान देने पर सभी काम अच्छे होते चले जाते हैं। लड़के लड़कियां की शादियों पर और व्यापार पर भी आपके दान का अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके दान की प्रशंसा इस भव में समस्याओं का समाधान करती है और परभव भी अच्छा बनता है। आज की प्रभावना का लाभ श्री धर्मवीर जी अनुजी जैन, जैन कॉलोनी जलंधर ने लिया। आज फगवाड़ा से SS जैन सभा के प्रधान श्री सतीश जी जैन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रवचन में उपस्थित हुआ और फगवाड़ा पधारने की विनंती की। मध्यान्ह में होशियारपुर से महिला मंडल उपस्थित हुआ, धर्म चर्चा के साथ विनंती रखी। आचार्य प्रवर ने सभी की विनंतियों को झोली में ग्रहण की। इसी के साथ दिल्ली, आगरा, मुकेरिया आदि अनेक क्षेत्रों से भाई बहन दर्शनार्थ उपस्थित हो रहे हैं। उपसर्ग हर स्तोत्र का जाप निरंतर जारी है और प्रतिदिन करीब 400 से ऊपर भाई बहन उत्साह के साथ लाभ ले रहे हैं। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो। तारांकन।